心提到起，委屈给人海中不放弃的，农民阿提海给安土民一个海给个，农民阿提海给斯马蒂和提海，安定是乌克萨的主，不得阿沙生的尼瓦里哈米，不得普特萨汗哈米的尼瓦里，घर में काम काज करने वाली महिलाएं, व्यापार करने वाले कर्मचारी, मजदूरी करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान भी यदि मुझे भक्ति भाव से पूछते हैं तो वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बड़ा आश्वासन है साधक जनों, हम सबके लिए सिमरन के माध्यम से भक्ति भाव पूर्ण सिमरन कीजिएगा, परमात्मा की प्राप्ति होती है, इससे बड़ा और सुख कौन सा होगा। भजिए राम नाम सुखदायी, इससे बड़ा और सुख कौन सा होगा। जब प्रभु प्राप्ति हो जाए, परम सुख कहा जाता है इसे, शाश्वत सुख अक्षय सुख इसे कहा जाता है, परम सुख अनश्वर सुख, इसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। योगक्षेम की चर्चा को आगे जारी रखते हैं सदस्यों, परमेश्वर के पगड़ी आज विराम देंगे इस चर्चा को। भगवान श्री आज ध्यानस्थ है, भगवान ने कोई अपनी भजनशाला बनाई हुई है, कोई कक्ष बनाया हुआ है, वहां आज ध्यान में बैठे हुए हैं। हर किसी को जाने की इजाजत नहीं, लेकिन देवऋषि नारद तो हर वक्त हर जगह जा सकते हैं। इतनी प्रीति है इनकी परमात्मा के साथ, इनको कहीं कहीं भी कोई मनाही नहीं, किसी वक्त भी कोई मनाही नहीं। कक्ष में पहुंच गए, भगवान को ध्यानस्थ देखा, जाके थोड़ी देर खड़े रहे, परमेश्वर को प्रणाम किया, कहा प्रभु ध्यान लगा रहे थे। हां, देवऋषि नारद ने पूछा, प्रभु ध्यान लगाने वाला बड़ा या जिसका ध्यान लगाया जाए वह बड़ा। भगवान ने तत्काल कहा, देवऋषि जिसका ध्यान लगाया जाता है वह बड़ा है, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? ब्रह्मा विष्णु महेश भक्त ऋषि मुनि मनीषी आप्तजन सब आपके ध्यानस्थ रहते हैं, आप पर ध्यान लगाते हैं, क्या आपसे भी कोई बड़ा है जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं? हाँ, परमात्मा देव कहते हैं मेरे से भी बड़ा है, मैं उसका ध्यान, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। देवऋषि ने कहा, जो आपसे बड़ा है मुझे उसके दर्शन कराइएगा, मेहरबानी करके। चल देवऋषि, चलते हैं। एक निर्जन स्थान जंगल है, विशाल पेड़ है, उस पर एक पंछी बैठा हुआ है। भगवान श्री उसके उस संकेत करके कहते हैं, यही पंछी है जो मेरे से बड़ा है। आवाज सुन रहे हो, ये हर वक्त राम 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 जपता है, इसे और कोई दूसरा काम नहीं। जब तक मैं इसके खान पान की व्यवस्था ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता, मैं रोज समय निकाल के तो इसके पास आता हूं और अपने हाथों से इसे खिलाता हूं, इसका योग क्षीर में स्वयं वहन करता हूं, और किसी के हाथ का खाता नहीं है। देवऋषि कहते हैं, प्रभु इसे कैसे पता लग जाता है? भगवान श्री कहते हैं, तू जा, तू कोशिश कर, इसके पास जल पड़ा है, थोड़ा सा भोजन भी है, खिला के देख। देवऋषि ने कोशिश की, निरंतर सतत अखंड राम राम जप रहा है। जब न जल ग्रहण किया न भोजन का ग्रास, कुछ नहीं। देवऋषि के मन में आया, शायद जल पीने से भोजन ग्रहण करने से इसके राम राम जपने में बाधा होती होगी। कहा पंछी, जितनी देर तू जल ग्रहण करेगा, भोजन खाएगा, उतनी देर तेरी जगह मैं राम राम जपूंगा। तू जल पी। दिग्ऋषि कहने पर इस पंछी ने अपनी चोंच में जल भर लिया है, फूक दिया, थूक दिया, मानो उसको अंदर नहीं लिया। देवऋषि बड़े निराश वापस आए। भगवान श्री ये सारे कौतुक को देख रहे हैं। कहा देख लिया देवऋषि, ये किसी के हाथ का नहीं खाता, तू देवऋषि है, तूने इसकी जगह पर राम राम जपा है, तेरे लिए सम्मान है, इसलिए तेरे हाथ का पानी ग्रहण तो कर लिया लेकर अंदर नहीं किया, मैं फेंक दिया। फिर महाराज आप क्या करते हो? चल लिया, थोड़ा सा भोजन अपने हाथ से दिया, चखा पिया, भगवान ने वह जल ग्रहण किया, भोजन कुछ किया। कहा ये देखा, अब वह किसी के हाथ से भी खाएगा, उसने देख लिया है कि मैंने इसका सेवन कर लिया है, दूसरा प्रसाद ग्रहण करता है। ऐसे भक्त का योग क्षेम देवऋषि मैं स्वयं वहन करता, जब तक मैं आके इसे रोज के रोज भोजन जल न पिलवा जाऊं तब तक मेरी दिनचर्या समाप्त नहीं होती। ये मेरे से भी बड़ा है जो मेरा सत्य स्मरण करता है, जो हर वक्त राम राम जपता है, मुझे याद करता है, मात्र जपना नहीं, जो मुझे याद करता हुआ, मुझे ही याद करता हुआ राम राम जपता है, इसे स्मरण कहा जाता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। देव सज्जनों, इस आठवें कर्मों में अध्याय में भगवान शिव ने यही आश्वासन हम सबको दिया है। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं, जिन दिनों संत महात्मा बद्री नारायण की यात्रा के लिए पैदल जाया करते थे, अब तो सब वाहन है जाते हैं। मानो बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है, थोड़े वर्षों की बात पहले थी, टोली भी जाते थे। आज एक टोली संत महात्माओं की जा रही है, एक को पेट खराब हो गया, रास्ते दस्त लग गए, डायरिया लग गया, सब लोग धीरे धीरे आगे निकलते गए, एक पे धीरे धीरे कमजोरी आती गई, इनका आगे चलना मुश्किल हो गया, एक बाकी सब आगे के आगे निकल गए। कुछ देर तक संतों महात्माओं ने इंतजार की, लेकिन सोचा कि अब ये जा नहीं सकेगा, बीमार, और उस वक्त कोई सात दवाइयां इत्यादि होती नहीं थी, अतएव यही सोचा इस महात्मा को पीछे ही छोड़ जाते हैं और हम बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते। बेचारे के पास चलने की हिम्मत नहीं, गिरता गिरता था, एक गुफा दिखाई दी, उस गुफा में बैठ के आए जाते, अब बैठने की हिम्मत नहीं, डायरिया, परफ्यूज, दस्त लगे हुए हैं, यूं समझिए कि जैसे डिहाइड्रेशन सी हो जाती ऐसी स्थिति। कुछ दिनों में आंखें अंदर धस गई, भारी कमजोरी हो गई, संत महात्मा देव एक परमात्मा देव कुछ भी तो कर, एक कृपा करना, तेरा नाम से ये सब चलता, तो यही मेरी मृत्यु कर दे, महाधाम तक बेशक ना पहुंचा, मुझे किसी प्रकार की कोई ग्लानी महसूस नहीं होती, लेकिन ये तेरा नाम, तेरा सिमरन भीतर भीतर चलता रहे जैसे अब तक चल रहा है। भगवान श्री हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, तुच्छ प्रार्थनाएं, क्षुद्र प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो इतनी बड़ी प्रार्थना मैं क्यों नहीं सुनेगा? अतएव जब सिमरन जाता है, ऐसे में भगवान से कहा रह जाता है, एक वृद्ध का रूप धारण करके एक हाथ में दही खिचड़ी और एक हाथ में कुछ दो चार पुड़िया, कहा बाबा ये दवाई खा लो, पहचानने की हिम्मत नहीं,
बस उनके हाथ से लेके इस महात्मा ने दवाई खा ली, कल फिर आऊंगा। तो कह रहे हैं कल फिर आऊंगा, दो तीन दिन का कोर्स है, ठीक हो जाओ। एक भगवान डॉक्टर जैसे शब्द बोल रहे हैं, वैद्य जैसे शब्द बोल रहे हैं, दो तीन दिन का कोर्स है, आज खा लो कल फिर आऊंगा तो ठीक हो जाओगे। मन ही मन सोच इस निर्जन स्थान पर कौन दवाई लेके मेरे लिए गरीब, मेरा परमात्मा की सेवा और कोई आश्रय। आज अंत में यही कहा है, मेरे आश्रित, ये शब्द कभी नहीं भूलना। हम देवी सज्जनों परमात्मा को छोड़ के सब आश्रय देते हैं, एक परमात्मा का आश्रय नहीं लेते। और भगवान बार बार कहते हैं मेरे आश्रित, जो मेरे आश्रित है वह मुझे आगे रहेगा, मैं उसी को मिलता हूं जो मेरे आश्रित है। जो मेरा आश्रय छोड़ के अस्पतालों का आश्रय लेता है, पुरुष का आश्रय लेता है, इत्यादि इत्यादि अनेक सारे आश्रय, धन का आश्रय है, माता पिता का आश्रय है, संतान का आश्रय है, अनेक सारे आश्रय है जो इनका आश्रय देता है। मैं अभी पूछता नहीं, क्यों मैं मुझे नहीं पूछते, इसलिए मैं अपने नहीं पूछता। जो मेरे आश्रित है मानो वह मेरी कदर जानता है, वह जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कितना समर्थ है, तभी मेरे आश्रित है। मेरा तो और कोई मन ही मन सोच रहे कौन आना होगा रिजन स्थान पर। सोचते सोचते राम राम जपते जपते एक दिन व्यतीत हो गया। अगले दिन वही उड़ी, वही दही खिचड़ी लेके फिर उपस्थित हो गए। लो दवाई खाना, आज थोड़ी ताकत आई हुई है, डायरिया रुका हुआ, मानो पहचानने की हिम्मत आई हुई है, वहां पकड़ी, हिम्मत करके वहां पकड़ी, बहुत जोर से तो नहीं, कस के नहीं, आराम से वहां पकड़ी। आपका पहले दवाई खा लो, वैद्य ने कहा, वैद्य ही कहोगे डॉक्टर को, पहले दवाई खा लो फिर पूछना। नहीं, पहले बताओ आप कौन। कहा ना बताऊं तो भगवान ऐसी प्यार भरी बातें भक्तों से नहीं करी, तो किससे करते, उनके मन में भी तो प्रेम उमड़ता, उनको भी तो कोई बंदा चाहिए जिससे वह प्रेम अपना व्यक्त कर सके। और वह भक्त होते अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करते, कोई भक्त मिल जाए तो उसे ऐसी बातें करते। कहना बताऊ तो भक्त कहता है मैं ना दवाई खाऊ तो ठीक, मैं जाता हूं। भगवान श्री अपने हाथ में दही का कटोरा लिए हुए, खिचड़ी इत्यादि लिए, पुड़ी लिए हुए चल पड़े। कहा जाते फिर वापस आ गए, आप फिर वापस आ गए हो। भक्त कहता है क्या कर दू, दवाई खाए तो मैं जाऊंगा। भगवान कहते हैं तो दवाई खाए तो मैं जाऊ, पहले बता चुका फिर दवाई खाऊंगा। भगवान श्री प्रकट हुए, मन ही मन सोच रहा था तेरे अतिरिक्त ऐसे निर्जन स्थान पर और कौन हो सकता, पर तू वेश बदल के आया हुआ था इसलिए मेरे राम मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। चरण वंदना करी, चरण पकड़ के पूछा, प्रभु एक बात बताओ, क्या तुम हरेक के लिए इसी प्रकार से सेवा करते फिरते हो? ये ऐसी बातें कोई भक्ति पूछ सकेगा ना, कोई अपना ही पूछ सकेगा? क्या हरेक के लिए जो भी कोई गरीब होता है, जो भी कोई आवश्यकतावान होता है, क्या हरेक के लिए इसी प्रकार से दौड़ते फिरते? कहा भक्त, हाँ कोशिश करता हूं, पहले कोई मिल जाए तो उसके अंदर प्रेरणा भरता हूं। जा मेरा भक्त भूखा है, उसको ये दे के आ, उसको इस चीज की आवश्यकता है ये पूरी करके आ, पर यदि कोई नहीं मिलता तो फिर मैं स्वयं जाता। मेरी इसी प्रकार से जिंदगी निकलती है, इसी प्रकार से मेरी दिनचर्या, दिन में कोई ना कोई ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास मुझे जाना ही पड़ता है। कुछ करो मैं और उनको भेज देता हूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मुझे ही जाना होता है। इतनी सी बात कहके भगवान अंतर्धान हो गए। दर्शन देते भक्त को, अब क्या जाना बद्रीनाथ, जब बद्रीनाथ बद्रीनारायण में यही दर्शन बैठे बैठे गए, गए होंगे नहीं गए मुझे पता नहीं। सतत स्मरण करने वाले का योग क्षेम मैं स्वयं मार करता हूं, बस इतना ही करने की आवश्यकता है। चलते फिरते, काम करते, सैर करते, उठते बैठते, सोते जगते, चलते कूदते, खाना बनाते, काम काज करते हुए हर वक्त परमेश्वर का सतत स्मरण बना रहे। क्या क्या करता है राम, क्या क्या करता है देवी सज्जनों, कितनी बातें आपकी सेवा में अर्ज की है। 300-400 वर्ष पुरानी बात होगी, एक भक्त किसी नवाब के पास काम करता है, एक इलाका जैसे ये समझिएगा, यहां का एक भक्त दंपति है, संतान ने अनंत भक्त है परमात्मा के, हर भक्त राम राम जपते रहते हैं और कोई काम नहीं। किसानों से लगान लेने का काम है उसका, अन्न के रूप में लेता है और राज्य का जो भंडार है उसमें डालता जाता है, उसके बाद जितना भी इकट्ठा हो जाता है वह सारा का सारा हर सीजन के बाद नवाब साहब को भेजना पड़ता है, ये उसका काम है। दामा जी इनका नाम बड़े प्रसन्न रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, भजन पाठ करते रहते हैं, सतत परमात्मा को याद करते हैं, दोनों ही पति पत्नी एक जैसे ही। 3-4 वर्ष से वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरने शुरू हो गए, जो कुछ दामा जी के घर में था सब कुछ बांट दिया। यहां तक आज ही लोग बता गई है, लोग पत्ते इत्यादि खाते थे पर सूखा पड़ा है तो पत्ते भी कहां से हो, पत्ते भी खत्म हो गए, पशु मर रहे हैं, मानव मर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मर गए, राज्य का जो भंडार था खो गए, हजारों जाने बच गए। इनके घर के आगे लोगों का तंत्र लगा रहता, जहां सुख पहुंचाने वाले होते वहां इनके प्रति ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं, इनको दुख पहुंचाने वाले भी होते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं उनको। किसी सूबेदार ने नवाब साहब से शिकायत की, देखो कैसा उधर दान, इतनी भी आवश्यकता नहीं समझी कि तेरे से परमिशन ले ले कि मैं ये अंडबट बिना तेरे से पूछे मानो उसे भड़काता, सेनापति को भेजा, जाओ दामा को बंदी बना के हथकड़ी लगा के मेरे दरबार में पेश कर। सेनापति आ गए, यही गीता जी का पाठ दामा जी कर रहे थे अपने कक्ष में बैठे हुए, बाहर निकाल गीता जी साथी हथकड़ी लगा, नवाब साहब के समक्ष पेश होना है। भक्त प्रसन्न है, कहा मैंने अपनी जिम्मेदारी सेनापति निभाई, अब अपनी निभाओ। पत्नी से कहा मेरे राम की करनी में मंगल ही मंगल है, कोई अपराध तो नहीं किया, कोई किया होगा कहीं, हमें सारे अपराधों का पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं कोई अपराध हुआ होगा जिसके कारण ये हथकड़ी लगी। पैदल चल पड़े, रास्ते में विठल भगवान का मंदिर आया है, उसी हथकड़ी को अपनी हथकड़ी को करताल बनाई और विठल भगवान के सामने अपने राम के सामने नाचना शुरू कर दिया। पुलकित हो गए, गदगद हो गए, दाताजी बहुत आनंदित हो गए। उधर इधर ये कौतुक देख रहे हैं, उधर क्या करते हैं? आज एक किशोर अवस्था का बालक, मनमोहक बालक, अपने कंधे से काली कंबल रखा हुआ पहुंचते हैं नवाब साहब के पास। सीधे दरबार में निडर निर्भय, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, किसी द्वारपाल को पूछने की जरूरत नहीं, चल पड़े। मैं दामा जी कह रहा हूं, बिट्ठू मेरा नाम बिट्ठू मगर, अपने नाम कहा, मेरा बिट्ठू नाम है, बिट्ठू मगर मेरा नाम है। जो दामा जी ने नुकसान किया है आपका, उसका भुगतान भुगतने के लिए आया हूं। दिखाई पैसे रख लीजिए, रसीद मुझे दे दीजिए। भगवान पैसे देकर रसीद मांग रहे थे, पक्का कहा, रसीद मुझे दे दीजिए। नवाब साहब ने थैली अपने मुनीम को, कंप्यूटर जो भी कोई होगा उसको दी, खाली करी फिर भर जाती, खाली करी फिर भर जाती है, रसीद लेके भगवान लोगों का। एक दो दिन की सफर के बाद दामा जी सिपाहियों के साथ पहुंचे। ये नवाब पागल हुआ हुआ, मैं बिट्ठू कहा गया, मैं बिट्ठू कहा गया, मैं बिट्ठू मार कहा गया। दामा जी के आने पर आते ही तत्काल हथकड़ी खुलाई, उसे अपने गले से लगाया, कहा बगल में गीता जी, कहा वो बिट्ठू से मिला, वो तेरा नौकर है ना दामा, मैं तेरा नौकर बिट्ठू, उससे मिला, उससे उसे देखे बिना मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे, उसके बिना मैं मिलाओ। हाँ जो ये कहता है नवाब साहब, मेरा कोई नौकर नहीं, मैं तो स्वयं नौकर, मेरा कोई नौकर नहीं, मैं किसी बिट्ठू को नहीं जानता, नहीं तू झूठ बोलता, मैं बिट्ठू मेरे से रसीद लेके गया और मैं रसीद देख तेरे गीता जी से पड़ी हुई, मैं देख नीचे लटक रही वही रसीद, ये मेरी रसीद काटी हुई है देख, कैसा कैसा खेल खेलते हैं, कैसी कैसी लीला दिखाते। दोनों त्रिलोकी के नाथ नवाब साहब आपको दर्शन दे गए, इन दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई, मन में तड़प भारी उत्कंठा, एक बार उसके दर्शन को, मैं तो पता नहीं अनजान बन के आया था, मैं भगवान के भगवान की तरह दर्शन करना चाहता हूं, एक दफा दामा अपने राम से कहो मुझे दर्शन दे। कहते सारे चलो उसी रूप में जैसे आए थे उसी रूप में पुनः आए, आदि नवाब साहब को भी दर्शन दिए और दामा को भी दर्शन दिए। जो मेरा नित्य स्मरण करता है, मेरे आश्रित रहता है, उसका योग क्षेम में स्वयं करता हूं। इसके साथ ही मेरे सचिन समाप्त करने की इजाजत दीजिए, धन्यवाद।